हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। दूसरी तरफ सुबह सुबह करण और मीरा से बहस होने के बाद समर को भी अभी बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन उन लोगों के सामने उसने ये बात बोल दी थी कि वो अपना अलग से भी काम देख रहा है, क्योंकि करण के साथ काम नहीं करना चाहता। इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे आज फिर से इस स्टूडियो में आना पड़ा, जहाँ पर उसे ऋषभ के साथ काम करना है और वो ऋषभ का सामना भी नहीं करना चाहता। इस पिछले एक साल में उसने अपनी तरफ से उसे इग्नोर करने की पूरी कोशिश की है और वो अपनी कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा। उसे लगा था कि वो ऐसा करेगा तो फिर ऋषभ भी वो सारी बातें भूल जाएगा, और वो खुद को भी बार बार ये बात याद दिलाता है कि वो स्ट्रेट है और उसे लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए कभी भी उसे ऋषभ पसंद आ ही नहीं सकता, फिर चाहे वो जो कुछ भी बोले। ये सारी बातें सोचते हुए वो स्टूडियो पहुंच गया, लेकिन उसे ये नहीं समझ आता अगर वो सच में स्ट्रेट है तो फिर उसे इतना फर्क क्या पड़ता है ऋषभ के आसपास रहने से, उसके कन्फेशन से, या फिर उसका सामना करने से। या फिर अभी वो खुद भी अपने सेक्सुअल प्रेफरेंस को समझ नहीं पाता, और शायद वो समझने की कोशिश भी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे लगता है बस स्ट्रेट कपल ही नॉर्मल होते हैं और बाकी कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और ना ही वो उस तरह से सोचता है, इसीलिए उसे बाकी सारी चीज़ें गलत ही लगती हैं। समर वहां पर स्टूडियो के अंदर आया और उसने देखा कि वहां पर तो कोई काम ही नहीं चल रहा था, सारे लोग अपनी जगह पर बड़े ही मायूस और परेशान से बैठे थे। उसे समझ नहीं आया कि अगर कुछ काम नहीं था तो फिर उन लोगों ने अगले दिनों से आने के लिए क्यों बोला था। ये सोचकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया और इधर उधर देखने लगा कि कोई उसे ऐसा मिले जो बताए कि वहां पर चल क्या रहा है। थोड़ी हिम्मत करके समर वहां पर स्टूडियो के और अंदर आया और साइड में खड़े हुए क्रू मेंबर से उसने बात करते हुए पूछा, क्या हुआ, सब ऐसे क्यों बैठे हैं जैसे कि बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ, ऐसा क्या हो गया। समर की बात सुनते ही उस स्टाफ मेंबर ने एक नज़र उठाकर समर की तरफ देखा और ऊपर से नीचे तक उसे देखते हुए वो स्टाफ मेंबर पहले तो उसे पहचानने की कोशिश करने लगा और उसे याद आया कि शायद ये वही नया लड़का है जिसे कल काम पर रखने की बात हुई थी। तो ये बात समझ आते ही उस क्रू मेंबर ने समर की बात का जवाब देते हुए कहा, सर ने आने से मना कर दिया और तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे कि बहुत बड़ी पोजीशन पर हो, जाओ और अपना काम करो। इतना बोलकर वो लड़का वहां से आगे चला गया और समर उसकी बात पर बोला, हाँ लेकिन मुझे काम क्या करना है ये तो बता दो। समर उसकी तरफ देखते हुए अपनी बात बोली और उसके पीछे ही आने लगा, लेकिन वो लड़का तब तक वहां से और आगे चला गया था तो वो समर की बात सुन ही नहीं पाया। समर ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और बोला, क्या अजीब लोग हैं, कोई कुछ बात भी नहीं रहा और ऐसे मातम फैला हुआ है जैसे कि कोई मर गया हो। अपने आप में ही ये बड़बड़ाता हुआ समर वहां से थोड़ा आगे आया और वहां आगे आते हुए समर की नज़र साइड में बैठे हुए उस आदमी पर पड़ी जिससे कल उसकी बात हुई थी। उसे देखते ही समर में थोड़ी राहत की सांस ली और तुरंत ही उस आदमी से बोला, सर आपने मुझे बुलाया था ना काम के लिए, तो अभी मुझे क्या करना है। समर ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उस आदमी से ये सवाल किया, क्योंकि अभी जिस तरह से क्रू मेंबर ने उससे बात की और जिस तरह वहां का माहौल था तो समर को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन समर को देखते ही उस डायरेक्टर की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई और उसने समर के कंधे पर हाथ रखकर थोड़ा सा खुश होते हुए कहा, अरे वाह तुम आ गए, चलो अच्छा है, कोई और तो नहीं लेकिन तुम जरूर ये काम कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि कल भी तुम्हारी बात मानकर ही वो ऋषभ खन्ना यहाँ पर आया था और आज उसने आने से साफ मना कर दिया। जैसे ही उसे मैनेजर ने ये बात बताई समर थोड़ा सा चौंकते हुए बोला, क्या ऋषभ ने यहाँ आने से मना कर दिया, ऋषभ सर ने, कल तो हमारी बात और डील फाइनल हो गई थी ना उनसे। समर का ये सवाल सुनकर वो मैनेजर बहुत ही ज्यादा मायूसी से बोला, हाँ बात ही हुई थी सिर्फ, साइन तो किया नहीं था और वो जल्दी साइन करते भी नहीं है, लेकिन हमें लगा था अगर उन्होंने बोला है तो टाइम से आ जाएंगे, लेकिन आज जब हमने फोन किया तो बोले कि वो किसी काम में बिजी हैं स्टूडियो में और यहाँ आने से उन्होंने साफ मना कर दिया, जबकि हम लोगों ने सारी तैयारी कर ली थी, एड शूट के लिए सपोर्टिंग कास्ट एक्टर सब कुछ तैयार है लेकिन बस मेन लीड ही नहीं है। मैनेजर की ये बात सुनकर समर ने कहा, अब उन्होंने मना कर दिया है तो भला मैं इसमें कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई और काम हो तो बताइए। वो मैनेजर उसकी बात पर तुरंत ही बोला, नहीं अभी के लिए तुम्हारा यही काम है और अगर तुम ये करने से मना करते हो तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो, जाओ और जाकर कोई और जॉब ढूंढ लो, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें एक बार तो ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जब कल उसके ने तुम्हारी बात मानी थी तो आज भी वो तुम्हारी बात मानकर आ सकता है, आज नहीं तो कम से कम कल किसी टाइम पर आने के लिए उसे मना लेना, मैनेजर ने उसे सलाह देते हुए कहा। लेकिन समर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ये काम कैसे करेगा, उसे नहीं लगा था कि ऋषभ उसके बोलने पर आएगा, कल वो आया था तो वो उसकी मर्जी होगी, ऐसा नहीं है कि वो समर की वजह से ही आया था, लेकिन ये बात वो मैनेजर को नहीं समझ पा रहा और तभी मैनेजर ने उसे कहा, ये लो मेरा कार्ड है, कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करना और दो मिनट रुको, मैं तुम्हें उस आरके स्टूडियो अपार्टमेंट का एड्रेस और फोन नंबर सब कुछ निकलवा कर देता हूँ और फिलहाल वो अपने स्टूडियो में ही होगा, तुम वहां पर चले जाओ और उससे पर्सनली मिलकर बात कर लेना, समझ लो एक तरह से यही तुम्हारा टास्क है हमारी तरफ से, और अगर उसने ये एड शूट कम्प्लीट कर लिया तो हम तुम्हें इसका परसेंटेज अच्छा खासा अमाउंट देंगे और यहाँ तुम परमानेंट भी हो जाओगे। मैनेजर ने समर को लालच देते हुए कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये बात समझ आ रही थी कि समर को इस वक्त जॉब और पैसों की जरूरत है, तो उसने भी इस बात का फायदा उठाया। मैनेजर का ये आइडिया काम भी कर गया, क्योंकि मैनेजर ने जैसे ही ये पैसों की बात बोली, समर तुरंत ही रुककर एक पल के लिए सोचने लगा और उसे लगा कि वो ऋषभ को पहले से ही जानता है और हो सकता है शायद वो उसे इस बात के लिए मना ले, और अगर वो आ गया तो फिर इसमें उसका भी फायदा है, तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है।